दिलाराम बाबा के दिल तक तनशीन, दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले, दिल में बाबा बाबा के स्नेह को समाने वाले, दिल के चिकित्सक आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, आपका हम डायमंड हॉल के इस भरे सभा में दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। भाई जी को दिल्ली में ज्ञान मिला। दिल्ली में ज्ञान मिलते समय आपने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। हृदय रोग चिकित्सा संबंधित आप अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं के सदस्य हैं। सोल माइंड बॉडी मेडिसिन के नवीनतम विचारधारा के रिसर्च वर्क पर आपको 2001 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से अवार्ड मिल चुका है। सन 2000 में यूएसए में होलिस्टिक हेल्थ केयर पर आपको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। वर्तमान समय ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में आप कार्यरत हैं। भारत सरकार के डीआरडीओ के साथ मिलकर जिस प्रोजेक्ट पर आप कार्य कर रहे हैं उसका नाम है कोरोनरी हार्ट डिसीज, राजयोगी लाइफस्टाइल, जिससे बहुत सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। बाप दादा को दिल से दिल तक प्रत्यक्ष करने के लिए सेवा में आप बहुत व्यस्त रहते हैं और ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आपका बहुत बड़ा योगदान है और ब्रह्मा कुमारी संस्था के एक आधार स्तंभ है। तो बहुत सुंदर विषय आज भाई जी हम सभी के समक्ष लेकर आए हैं, ब्रह्मा बाबा के 8 मुख्य कदम, ब्रह्मा बाबा के 8 मुख्य कदम। तो आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी को हम सभी के ओर से नम्र निवेदन करते हैं, आप हमें ब्रह्मा बाबा के 8 मुख्य कदम से लाभान्वित करें। ओम शांति।
ओम शांति। चलिए इससे पहले हम इस पर रूढ़ियान करें, मीठे ब्रह्मा बाप ने ऐसे कौन से मुख्य 8 कदम थे जिन पर चल करके बाबा फरिश्ता बने, जिससे चल करके बाबा संपन्न और संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया। और आज हमारे सामने सैंपल है, उदाहरण मूर्त है कि हम भी ऐसा बने। चलिए हम एक मिनट के लिए अपने आप को ये रियलाइज करेंगे, अंदर से सच्चे दिल से महसूस करेंगे कि मैं स्थूल देह नहीं। सभी सीधे होके बैठ जाएं। ये मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पुंज, परमधाम निवासी, 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के पावर हाउस परमपिता परमात्मा शिव से सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद से कंबाइंड हूं। बाबा ही मेरा संसार है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। कंबाइंड हो जाइए बाबा के साथ, उस पावर हाउस से अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करेंगे। ओम शांति। कल शाम को भी बाबा ने जो हमें मुरली चलाई, अवेक्ट मुरली जो चली 18 जनवरी की, उसमें बाबा ने हमारे सामने यही लक्ष्य रखा और ये कहा कि हम सभी का लक्ष्य क्या है, ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनना। क्योंकि हमारा बाबा से क्या वायदा है, क्या वायदा है बताइए, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और फिर राजधानी में साथ में आएंगे। ऐसा सभी का वायदा है, जिनका वायदा हाथ उठाओ। मेरा तो वायदा है, वेरी गुड। तो हम सभी साथ जाने वाले हैं ना, तो साथ कौन जाएगा, जो समान होगा, है ना। अगर साथी बन के जाना है तो क्या करना पड़ेगा, समान ही साथी बन के जा सकते हैं ना। अगर हम साथ समान नहीं हो तो क्या करना पड़ेगा, पीछे बारात में आना पड़ेगा, है ना, राइट। जो साथी बन के जाएंगे वहां तो टॉप, बाबा के साथी बन के जाएंगे उचात, जो बराती बन के जाएंगे वहां तो टॉप, बराती कोई भी नहीं जाएगा, तो बिना बारात के जाएंगे, बारात में जाने वाले बहुत है पीछे ना, है ना। हम लोग तो बाबा के साथी बन के जाएंगे, राइट। तो बाबा ने कहा कि अभी हमको ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनना है, क्योंकि बाबा को अभी तो शिव बाबा का पार्ट ब्रह्मा बाबा के द्वारा साकार में पूरा हुआ, फिर दादी गुलजार जी के द्वारा पूरा हुआ। अब कितने साल हो गए इस बात को भी, लगभग 9 साल हो गए, 9 साल से अवैक्ट बाबा का पार्ट पूरा हुआ। और अभी बाबा को, बाबा कैसे प्रत्यक्ष होगा, बाबा को अभी हमारे द्वारा प्रत्यक्ष होगा, हम बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होगा, राइट। जब हम में से हर एक फरिश्ता बन जाएगा, एकदम हमारी अवैक्ट स्थिति बन जाएगी, तो फिर बाबा का जैसे बच्चों के चेहरे से चलन से उसके माँ बाप दिखाई देते हैं कि अपने माँ की तरह बात करता है, अपने पिताजी की तरह बात करता है, या बच्ची होती तो माँ की तरह बात करती है, बच्चा होता अपनी माँ की तरह व्यवहार करता है, उसकी चाल भी वैसी है, है ना, उसका डैन चैन भी वैसा है। तो ऐसे ही अब हमारे द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होगा, हमारे जो दैवी गुण धारण करेंगे ना बाबा के, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनते जाएंगे, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम बनते जाएंगे, तो वो जो है, और हम अहिंसा परमोधम बनते जाएंगे, तो हमारे चेहरे और चरण के द्वारा बाप प्रत्यक्ष होगा। चारों तरफ यही आवाज होगा कि फरिश्ते चारों तरफ छा गए, किंतु हमारा जो ये पार्ट है बड़ा गुह्य पार्ट है। द्वापर युग से हम गिरे और 63 जन्म लगातार एक के बाद एक से ज्यादा एक पाप करते आए, पाप क्रम हमसे होते आए, क्योंकि हम विकारी बन चुके, हम देवीमान के कारण हमारे अंदर देवीमान के संबंध संपर्क, देवीमान के पदार्थों के वश हो गए थे, और फिर देवीमान से पैदा होने वाले 5 आसुरी स्वभाव काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश हो गए थे, फिर उनसे उत्पन्न होने वाली हमारी कुछ आसुरी आदतें संस्कार पैदा हो गए, और हम उसके वश होकर कर्म करते गए। जब शिव बाबा मिला, हमने उनको पहचान लिया, तो जैसे ही बाबा को हम पहचानते हैं, माया अपने फुल फोर्स से आने लगती है, क्योंकि रिटर्न जर्नी है ना हमारी। रिटर्न जर्नी में क्या होगा, जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते से वापस जाना है, उसी रास्ते से वापस जाएंगे, किंतु उस रास्ते पे वो सब मिलेंगे जिनके साथ हमारे कोई भी हिसाब किताब थे, जिनके साथ हमने कोई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अवश्य कर्म किए, वो फाइलें खुलती हैं। ऐसा नहीं कि हम परमधाम में जाते हैं, अशरीर आत्मा बन के परमधाम में अशरीर बाप से कंबाइंड होते हैं और हमारे विक्रम ही नाश हो जाते हैं, या हम निराकारी आत्मा बन के निराकार बाप से कंबाइंड होते हैं तो हमारे सारे विकार भस्म हो जाते हैं, हम निर्विकारी बन जाते, ऐसा नहीं होता है। बाकायदा पूरी फाइलें खुलती हैं, रिटर्न जर्नी पर पूरी फाइलें खुलती हैं, वही व्यक्ति हमारे सामने आते हैं और उन व्यक्तियों से हमारी वो सब बातें यादें भी वापस आ जाती हैं, वो फाइलें खुल जाती हैं, और फिर उन फाइलों को भी अगर हम बाबा की याद में निरंतर रहें, वो याद ही एक फायर प्रूफ ड्रेस है, माया प्रूफ ड्रेस है। निरंतर याद का अभ्यास, ज्वालामुखी याद का अभ्यास, वो अगर उसमें रहते हैं तो ही हमारी, हमें उस रिटर्न जर्नी पे कोई हम गिरते नहीं है, नहीं तो सांप सीढ़ी का खेल है, जैसे थोड़ी सावधानी हटी और माया का लगता गोला। सभी को अनुभव है रिटर्न जर्नी पे क्या होता है, थोड़ा भी बाबा को भूले तो एकदम माया का गोला लग जाता है, अर्थात हम गिर जाते हैं। हमारा नंबर मान लीजिए चलते चलते 96 पे पहुंच गए, अभी बस 4 ही कदम दूर है ना मंजिल 100 पर पहुंचने के लिए, अपनी संपूर्ण संपूर्ण अवस्था पहुंचने के लिए, किंतु माया का ऐसा गोला लगता है सीधी 96 से कहां ले आती, 6-7 पे ले आती, 8 पे ले आती है, वापिस जर्नी करो। होता नहीं होता ऐसा, होता है ना, थोड़ी सावधानी हटती है तो हम भूल जाते हैं और हम गिर जाते हैं, कोई ना कोई भी कभी अहंकार के वश, कभी लोभ के वश, कभी मोह के वश, कभी क्रोध के वश, कभी कामना के, काम विकार के वश भी, किसी तरह किसी से हमारा लगाव हो जाता है, किसी से झुकाव हो जाता है, किसी के प्रभाव में आ जाते हैं, किसी के टकराव में आ जाते हैं, और उससे फिर हमारे अंदर बहुत विचारों क्यों लग जाती है, वैध संकल्पों क्यों लग जाती है। कल भी बाबा ने कहा अगर हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है तो क्या करना पड़ेगा, वैध संकल्प और वैध समय हमारा ना जाए। तो उससे मुक्ति, व्यर्थ संकल्प मुक्त और व्यर्थ समय मुक्त बनना। क्योंकि समय बहुत थोड़ा है, कितना समय बाकी है बताइए, कितना समय बाकी है? मैक्सिमम 10 साल, राइट? मैक्सिमम 10 साल नहीं, और उससे भी हमको क्या पता, अभी हम यहां बैठे हैं, हो सकता है 1 घंटे बाद ही हमारा शरीर छोड़ने का टाइम आ जाए, या हो सकता है आधे घंटे में आ जाए, 10 मिनट बाद ही आ जाए, है ना? कुछ पता नहीं। किसी को भी अपने जाने का समय पता है क्या? पहले तो हम कहते थे नहीं, बूढ़े लोग ही जाएंगे, अभी तो बूढ़े की बात है क्या? अभी तो बूढ़े बूढ़े बैठे रहते हैं, जवान जवान चले जाते हैं, अचानक चले जाते हैं, कभी भी चले जाते हैं। तो अंतिम समय का किसको भी पता नहीं है, हो सकता है वो 1 दिन हो सकता है 5 दिन हो सकता है 2 साल हो, 5 साल, 7 साल हो, 10 साल हो, किसको? और समय आने वाला बड़ा भयानक है। जो 2020 में कोविड आया, 2021 में आया, 2020 से 2021 वाला ज्यादा खतरनाक था, 2022 आया, लगता है युद्ध खत्म, वो भी खत्म हो गया, किंतु उसके बाद रशिया यूक्रेन की वार शुरू हो गई। 23 अभी आया, 23 में भी वो वार खत्म नहीं हुई तो दूसरी वार शुरू हो गई। 24 आया तो उसके बाद एक और वार शुरू हो गई। 25 आया तो आपने देखा 25 में क्या क्या हुआ, जो चीजें कभी नहीं हुई थी 22, 23, 24, 25 में, वो चीजें हुई जो कभी नहीं हुई थी। दुबई में, सऊदी अरब में बाढ़ आ गई, है ना, जहां रेगिस्तान थे वहां बाढ़ आ गई, बाड़मेर में बाढ़ आ गई, है ना, जैसलमेर में बाढ़ आ गई, है ना, तो ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो आज देशों में कितने भूकंप, कितनी चीजें, जहां गर्मी नहीं होती थी कभी लंदन में, फ्रांस में, वहां गर्मी हो गई, है ना। तो ये सब चीजें जो अचानक से हो रहा है, राइट, अचानक जो हो रहा है और तेजी से नेचुरल क्लाइमेटिज बढ़ रही है। तो जो पिछले, मुझे याद है जब 68 में हमारे माता पिता ज्ञान में चले, तो उस समय हमारे माता पिता, तो मैं बचपन में छोटा था, 9 साल का था, तभी माता पिता के साथ सेंटर पे जाना होता था, संडे को स्पेशली जाते ही थे, थर्सडे को भी सभी जो भी मेले होते थे, दादियों से मेरा पांडव भवन में, दिल्ली पांडव भवन में मिलना होता था, हमारी दीदी हमको लेके जाती थी और दादियों से मिलती, सभी दादियों दीदियों से बचपन से मिले, पर ब्रह्मा बाबा से मिलना नहीं हुआ, क्योंकि हमारा फरवरी में जाने का प्रोग्राम था, मधुबन आने का प्रोग्राम था, बाबा जनवरी में चले गए, तो हम नहीं आ पाए बाबा के पास, बाबा से नहीं मिलना हुआ। तो तब तो हमारा ऐसा टाइम बीतता गया, किंतु फिर 86 में जब मैं दिल्ली एम्स में था, तब उस समय बाबा से मुलाकात हुई, और बाबा से नहीं, मतलब दादी, अपने बाबा का दोबारा से ज्ञान मिला। हालांकि घर में गीता पाठशाला तो भी हम चले नहीं, क्योंकि पढ़ाई में बिजी रहे, फिर एक बार ज्ञान मिला, समझ आई, तो तब से अमृत वेला शुरू किया, रेगुलर मुरली शुरू की। और फिर यहाँ आने के बाद, 95 में आने के बाद, बड़ी दादी जी, दादी प्रकाशमणि जी, दादी निर्मल शांता जी और सभी दादियाँ, स्पेशली मनोहर दादी, जो बाबा की बहुत अच्छी हिस्ट्री सुनाती थी, क्लास में भी सुनाती थी दादी के साथ, हम कई बार दादी हमको पर्सनल बैठ के भी बहुत सारी बाबा के साथ के अनुभव सुनाती थी। निर्मल शांता दादी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सुनाती बाबा, क्योंकि बाबा की लौकिक पुत्री थी, तो बहुत अनुभव। पुट्टू दादी हमारे यहाँ लगभग 2 साल 8 महीना रही लास्ट में, जब उनका फ्रैक्चर हो गया था पैर का, तो उनसे भी हम बाबा के बहुत अनुभव सुनते थे, बाबा का जीवन कैसा था। फिर सबसे ज्यादा जो मुझे पालना मिली वो विश्वरतन दादा की मिली। विश्वरतन दादा वो थे, शायद आप कितने लोग जानते हैं विश्वरतन दादा को, हाथ उठाओ, जानते बहुत अच्छा। तो विश्वरतन दादा बाबा के बिल्कुल ऐसे थे ना, बाबा को, बाबा साकार बाबा थे, ऐसे ही थे बिल्कुल, ऐसी उनका उनका चलने का ढंग, उनका बोलने का ढंग, उनका व्यवहार। और ब्रह्मा बाबा ने कहा था कि मेरे शरीर को अग्नि दास में कौन देगा, विश्वरतन दादा के लिए कहा था। तो मतलब इतने बाबा को फॉलो करने वाले थे, और कहा करते थे, मैं जब दादा के साथ, बाबा के साथ बैठता, बाबा मैं तो लेट, दादा को बोलता, दादा मैं तो लेट आया हूं, तो मुझे ब्रह्मा बाप समान बनना कैसे बनूंगा, मुझे शॉर्टकट मेथड बताओ। तो वो कहते थे, देखो वैसे तो बाबा के 18 कदम लिखे हुए हैं किताबों में, कि तो जो मैंने देखा 1936 से बाबा को देखा, जैसे बाबा को मैंने जीवन देखा और बाबा के बारे में जो भी बात मैंने मुझे पता है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूं, वही मैं बातें मुख्य आपसे शेयर करूंगा। कि बाबा दादियों की नजरों में और बाप पुरुषोत्तम दादा की नजरों में कैसे थे, कैसे बाबा ने अपना जीवन, कैसे बाबा ने शुरू से जब से बाबा शिव बाबा की पधरामणी हुई तब से कैसे बाबा का जीवन बदल गया, आज उसी को हम समझते हैं। देखिए जो मैं पहले आपको आठ कदम बता देता हूं ताकि उस पर हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। पहला कदम है अंतर्मुखता। अगर मुझे सचमुच ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनना है, मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है और मुझे माया के अटैक, माया के जो वार होने वाले हैं, माया के पांच विकार और प्रकृति के पांचों तत्व अब आखिरी में जोर से टेस्ट ले रहे हैं, और जो जो हम आगे बढ़ेंगे, जो जो हम आगे बढ़ेंगे माया और बड़े रूप में आएगी। माया रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। अगर आपके पास माया नहीं आ रही है इसका मतलब आपका पुरुषार्थ नहीं चल रहा है, आप वहीं खड़े हुए हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे। हम आगे बढ़ रहे हैं इसका मतलब एक से एक बड़े, उससे बड़े पेपर आते जाएंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे, ऐसे पेपर आएंगे। और अगर हमारे पास ये आठों कदम पे हम रेगुलर चल रहे हैं, और ये कदम कोई शुरू से नहीं, मतलब ये हर समय चाहिए, आठों कदम हर घड़ी चाहिए, हर सेकंड हर श्वास में चाहिए, अंत तक चाहिए, वो स्थिति हमारी निरंतर बनी रहे, तभी हम बाप समान फरिश्ता बन सकते हैं। ब्रह्मा बाबा के समान फरिश्ता बन के सारे विश्व में 810 करोड़ आत्माओं तक बाबा का मैसेज पहुंचा सकते हैं। क्योंकि अभी जो सेवा होने वाली है वो कैसे होने वाली है? भाषण से नहीं होने वाली है। कैसे होने वाली है? मनसा के द्वारा होने वाली है। और हमारे चेहरे और चलन, चेहरा माना मन और चलन माना कर्म, मेरा देखना, मेरा सुनना, मेरा पढ़ना, मेरा बोलना, मेरा चलना, व्यवहार करना, भोजन करना, हर चीज से मेरी वो जो मेरा यूं का यूं जो रूप है ना, जब मेरी मनसा शुद्ध पवित्र है तो मेरे वाइब्रेशन, जैसे टेलीविजन के द्वारा पूरी की पूरी फोटो आपकी ट्रांसमिट होती है ना, आप बोलते हुए चलते हुए ट्रांसमिट होते हो, खेलते हुए भी ट्रांसमिट होते हैं ना आपकी, ऐसे की ऐसे मेरी जो चित्र है, चेहरा और चलन विश्व की हर आत्मा तक, जो भी इस तलाश में होगा, शांति प्यार खुशी की तलाश में होगा, उसको साक्षात्कार होगा। और स्पेशली हमारे जो ईस्ट, हम जिसके ईस्ट हैं, जो हमारे भक्त हैं, उनको ऐसा का ऐसा साक्षात्कार होता रहेगा बकायदा। हमें वहां जाने की आवश्यकता नहीं, मेरे को अमेरिका जाने की आवश्यकता नहीं, मेरे को लंदन जाने की आवश्यकता नहीं, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया जाने की आवश्यकता नहीं, किसी देश में जाने की आपको आवश्यकता नहीं। ब्रह्मा बाबा ने कोई देश की विजिट नहीं किया, इंडिया को छोड़ के, नेपाल को छोड़ के, बाकी बाबा तो भारत में ही रहे, किंतु आज सारे विश्व में ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होता है। अभी तक कुछ कुछ दादियों का साक्षात्कार भी होना शुरू हुआ है, किंतु आज तक भी ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होता है। होता है नहीं होता है? वो दिन आएगा जब हमारा भी साक्षात्कार होना शुरू हो जाएगा, किंतु वो दिन कैसे आएगा, चलते हैं इस बात पर। तो पहला कदम लिख लीजिए आप, अंतर्मुखता। दूसरा कदम है बेहद की वैराग्य वृत्ति, और ये सीक्वेंस में है सारे। तीसरा कदम है तन मन धन और संबंध संपर्क का समर्पण। तन मन धन और संबंध संपर्क का समर्पण। चौथा कदम है सहनशीलता। पांचवा कदम है बेफिक्र बादशाह। छठा कदम है त्याग, तपस्या और सेवा। सातवां कदम है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। और आठवां कदम है नष्टो मोहा, स्मृति लब्धा, स्मृति स्वरूप। तो ये आठ कदम है। अब हम देखते हैं बाबा को कैसे शुरू हुआ। पहले हम अंतर्मुखता का अर्थ समझ लेते हैं। अंतर्मुखता माना अंदर में जो मैं आत्मा हूं, परमात्मा से कंबाइंड होकर के, शिव बाबा से कंबाइंड होकर सोचना, निर्णय करना, देखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, खाना खाना, पानी पीना, कुछ भी पीना, श्वास लेना, हाथ पैरों से कर्म करना, चलना या किसी भी देहधारी से व्यवहार में आना, इसे कहते हैं अंतर्मुखता। अंदर में जो मैं आत्मा हूं, परमात्मा शिव से कंबाइंड होकर सोचना, जब भी कुछ सोचना है बाबा से कंबाइंड होकर सोचना है, जब भी कुछ निर्णय करना है तो बाबा से कंबाइंड होकर करना। इसलिए बाबा ने कहा था एक बार कि अगर बाप से करंट खींचनी है, तीन बातें चाहिए आपको। पहली बात तो चार बातें चाहिए। पहले सत्य की समझ, अर्थात जो बाबा ने ज्ञान दिया उसकी समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ। दूसरी धैर्यता, धैर्यवत होकर के, पेशेंस चाहिए। तीसरा गंभीरता, सीरियस होकर करना पड़ेगा। कैजुअल नहीं कर लिया अमृत वेला, चलो पूरा हो गया, मुरली सुन ली, कैजुअली सुन ली कोई बात नहीं, मुरली पढ़ ली कोई बात नहीं, चलो फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है, धैर्यता सीरियस होके। और फिर सोने के पहले पोता मेल देना, ऐसे लिख दिया बाबा ओके सब कुछ ठीक है, नहीं, डिटेल में लिखना है बाबा को, एक एक मन और बुद्धि खाली करके सोना है। और चौथा है सहनशीलता। चार बातें चाहिए अगर बैटरी चार्ज करनी है तो। इन आठों कदम में भी चारों बातें चाहिए, सत्य की समझ, दूसरा धैर्यता, तीसरा गंभीरता, सीरियस होके करना है, चौथा सहनशीलता। तो अंतर्मुखी बाबा का, जब दादी बताती थी कि बाबा, निर्मल शांता दादी कहते थे बाबा काफी समय से, जैसे 60 इयर्स में तो बाबा के अंदर शिव बाबा की पधरामणी हुई, किंतु उसके पहले बाबा ने रथ को तैयार किया, मतलब लगभग 1928 से, जब बाबा जब 52 साल के थे तभी से बाबा अंतर्मुखी होने लगे थे। बाबा का बोलना, व्यवहार में आना बहुत कम होता चला गया। 32 के आसपास तो बाबा और अंतर्मुखी हो गए थे। तो बाबा तब अंदर अंदर अपने अंदर बस सारा टाइम अंदर चुप रहते थे और अंदर ही अंदर सोचते रहते थे। तो बाबा अपने आप बात कर, अपने, क्योंकि बाबा राज दरबार में जाते थे, नेपाल के राज दरबार में, बड़ौदा, उदयपुर, जोधपुर के, यहाँ बाबा का आना जाना था। वहां के बाबा के जो वहां की राजकुमारियां और रानियां जो थी उनके गहने बाबा बनाते थे। इवन विक्टोरिया के भी, विक्टोरिया थे ना रानी विक्टोरिया, वहां उसके भी काफी सारे गहने बाबा बनाते थे। तो बाबा का आना जाना था राज परिवार, बाबा देखते थे, और बाबा को राज दरबार में बैठने की अनुमति होती थी। बाबा देखता राजा कैसे बात करता है, अपनी अपने दीवान से, अपने सेनापति से, अपने मंत्रियों से कैसे बातचीत करता है। तो तब से बाबा के अंदर ये आ गया था कि मैं जो हूं, ये तो बाबा ने 12 गुरु किए, तो बाबा के अंदर ये बात तो आ गई थी कि हम आत्मा हैं, और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार हैं, क्योंकि उसके बारे में तो कहा जाता है, पहले से भी कहा जाता था। तो वो जो है बाबा अपने मन बुद्धि संस्कार से, पांचों कर्मेंद्रियों से, आंख, नाक, कान, मुख और त्वचा, इनसे बात करते थे बाबा। जैसे दरबार में राजा बात करता है, अपने दीवान से बात करता है, अपने मंत्री से, प्रधानमंत्री से बात करता है, और उससे बात करता है, पूरा हालचाल लेता है, ऐसे बाबा भी अपनी डायरी लिखते थे। मैं यहां एक बात दोबारा याद दिला दूं, क्योंकि रिटर्न जर्नी पर है और बाबा एक्यूरेट कंप्यूटर है। अगर हम बाबा को बिल्कुल पूरा 100% फॉलो करेंगे, हम मंजिल पे पहुंच जाएंगे। जो भी एग्जाम होंगे वो पेपर आएंगे बीच बीच में, बड़े कठिन पेपर, उसको ही पास कर लेंगे। तो पहला जो स्टेप, और मुझे ये सी भी एक बात याद आती है, जब मैं 95 में जब माउंट आबू आया दिल्ली छोड़ करके, मैं दिल्ली के एक स्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट नाम का हॉस्पिटल था, उसमें कार्य करता था, और तब मैं यहाँ पर आया था। तो बाबा ने तब दादी मुझे कभी कभी दादी ने पांचवें दिन ही मुझे कहा था कि आपको मेरे पास 5 मिनट के लिए तो रोज आना ही है, मुरली के बाद मुझसे मिलके मेरे पास बैठ के जाना है, काम हो नहीं हो तो भी, तो रोज बैठना होता था दादी के पास। दादी कभी कभी अकेले होते, मैं कुछ ना कुछ, क्या जब सबसे मिल लेती थी, मुझे कुछ ना कुछ पूछती थी या कुछ बताती सिखाती थी कर्मों के द्वारा। तो दादी जी ने एक दिन मुझे कहा, गुप्ता जी आप जानते हो इंचार्ज किसे कहते हैं? मैंने कहा दादी इंचार्ज माना एचओडी जो होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं। उसमें शायद मधुबन में 46 डिपार्टमेंट थे पांडव भवन में, तो दादी अलग अलग डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं। तो दादी ने कहा इंचार्ज का मतलब इसका रियल मीनिंग बताओ। तो मैंने कहा दादी मुझे नहीं पता, आप बताइए। तो दादी ने कहा इंचार्ज माना जो इन रह के, इन माना अंदर रह के अपने आप को निरंतर चार्ज करता रहे शिव बाबा से, अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करता रहे और उससे अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने संस्कारों को पोषित करता रहे, उसको नरिशमेंट देता रहे, अपनी आंखों को, अपनी नाक को, कान को, मुख को, पूरे शरीर के हर अंग को चार्ज करता रहे। सातों आत्मा के जो सात ऊर्जाएं हैं ना, उनसे भरपूर करता रहे, और जो भी उसके संबंध संपर्क में आए उनको भी वो शांति, किसको शांति चाहिए, जिसको प्यार चाहिए, जिसको सुख चाहिए, आनंद चाहिए, सहन शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए, जो भी शक्ति चाहिए उससे उसको भरपूर करता रहे, उसको बोलते हैं इंचार्ज। और जो आंख दिखाते हैं गुस्सा करके दूसरों को कंट्रोल करते हैं वो है आउटचार्ज। तो दादी ने मुझे तब से सिखाया कि इंचार्ज क्या होता है, आउटचार्ज क्या होता है। वो इंचार्ज बना अंतर्मुखी। तो हमको क्या बनना है, सभी को क्या बनना है, इंचार्ज क्या आउटचार्ज। कभी किसी को आगे से आंख मत दिखाना, क्योंकि मुझे चश्मा था 16 साल की उम्र से, 16 साल की उम्र में चश्मा लगा जब MBBS में एडमिशन के पहले लग गया था, और नंबर मेरा था 3.5 और 3.25 इस आंख में, नजदीक का भी चश्मा था डेढ़ नंबर का, इसमें भी 1.25 था, और सिलेंडर की लहर 3 थी मेरी। ये जब मैं 59 की एज में मेरी हुई तो तब मेरे को ये एक दिन ऐसे ध्यान आया कि बाबा कहते बच्चे किसी के भी अवगुण देखने से बीमारी होती है, सबके गुण देखो। तो मैंने इसी एक बात का पुरुषार्थ किया, पहले मैं लोगों को आंख दिखा देता था, कोई बात मेरे को पसंद नहीं आता मैं आंख दिखाता था ऐसे करके। आज मैंने बहुत दिनों बाद ऐसे किया है, नहीं तो मैं करता नहीं हूं ऐसे करके, है ना। कभी किसी को गुस्सा नहीं करना, कभी किसी के अवगुण नहीं देखना। तब से मैंने अभ्यास करना शुरू किया, आंख दिखानी बंद कर दी, गुस्सा थोड़ा सा भी अंदर भी सोचना बंद कर दिया, सबके गुण देखने शुरू किए, और 3-4 महीने में मेरा नंबर बदल गया। तो मैंने सोचा शायद मेरा नंबर बदल गया है तो मेरे को अभी शायद मेरा चश्मे का नंबर बढ़ गया है, क्योंकि हमेशा बढ़ता था। तो मैंने कहा इस बार दिखाने जाता हूँ आंखें, तो आंखें दिखाई तो मुझे पता लगा कि आपका तो चश्मे के साथ मुझे धुंधला दिखाई दे रहा था, चश्मा लगाया धुंधला दिखाई दे रहा था, चश्मा उतारा तो मेरे को साफ दिखाई दे रहा था। तो फिर उन्होंने कहा आपका तो नंबर ही बदल गया है, आपका तो नंबर ही हट गया है, तो बिना चश्मे के मुझे दिखाई देने लगा। तो 16 साल से 59 साल तक कितने साल हो गए, 43 ईयर्स में चश्मा लगाया, और 43 ईयर्स से हो गया अभी कितना साल हो गए, 7 साल, अभी 67 हो गया, 8 साल से मैं चश्मा फिर हट गया पूरा, ना दूर का ना नजदीक का। तो अंतर्मुखी हो गए रहो ना तो कितना फायदा होता है, क्योंकि अंतर्मुखी सदा सुखी कहते ना, जब अंदर में मैं बाबा से कंबाइंड होकर देखूंगा किसी को भी तो मुझे उसके गुण ही दिखाई देंगे। बाबा कहते रावण जैसा कोला भी, कोई काला कोला भी हो ना तो भी उसके अंदर भी आपको कुछ ना कुछ गुण दिखाई देगा। किसी के अवगुण देखना ये सबसे बड़ा दोष है, यही कलेश का कारण होता है, कलह कलेश का कारण होता है, संबंध बिगड़ने का कारण होता है जब हम दूसरों के अवगुण देखते हैं। कल भी बाबा ने कहा ना, कोई रॉन्ग भी करता है तो क्या करना है आपको। कल की मुरली, सुबह की मुरली सुनी थी ना बाबा के 18 जनवरी की, कोई परिवार में गलत भी करता है तो हमारी एक रस एकटी की अवस्था होनी चाहिए ना, क्योंकि हम तब भी उसके अवगुण नहीं देखने हैं, हमारे परिवार का सदस्य है, हमारे परिवार का ही है, हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, एक दूसरे के कौन है, कई जन्मों के संबंधी हैं ना, तो एक दूसरे गुण देखना चाहिए। तो हमारी पहली पहली क्वालिटी कौन सी है, अंतर्मुखता। अगर मैं सचमुच में फरिश्ता बनना है, बाबा के साथ जाना है, तो बाह्यमुखता छोड़नी होगी। बाह्यमुखता माना, बाह्यमुखता माना सबसे बड़ा बाह्यमुखता कौन सी है, ये है ना, सबके पास है ना, ये माया का बच्चा है ना, क्या है ये माया का बच्चा, इसमें पांचों विकार हैं है ना, उनके बाल बच्चे तत्व भी हैं, पांचों तत्व भी हैं, तो माया और तत्व इसी के द्वारा अटैक करते हैं हमारे ऊपर। हमें मोबाइल को यूज करना है, मोबाइल हमें यूज ना करे, ध्यान रखना है इस बात का, राइट। तो मोबाइल, टेलीविजन, गूगल, ये सबसे बचना है, व्हाट्सएप ना, जितना हो सके कम से कम इसे यूज करना है, कम से कम। मैं इस पे आज बच्चे कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं, हमारे बीके भाई बहने भी देखना शुरू करते हैं, आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा, कब बीत जाता पता नहीं लगता है। जबकि कहते बाबा बार बार मुरली में कहता बच्चे तुम्हारा एक एक संगम का एक एक सेकंड एक वर्ष के बराबर है। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। अगर 3600 हमने एक घंटा भी पावरफुल याद किया ना बाबा की याद में रह के कर्म किया। खाली याद करना आवश्यक नहीं है, बाबा की याद में रह के कर्म करना आवश्यक है। मुझे याद आता जब मैं माउंट आबू आया तो मेरे दिल थी मैं माउंट आबू जाने के बाद मैं बस 4-5 घंटा सुबह पेशेंट देखूंगा, उसके बाद तो मैं फ्री रहूंगा, शाम को जाऊंगा नहीं जाऊंगा, बाकी शाम को खूब 2-3 घंटे योग किया करूंगा। और माउंट आबू आने के बाद मेरे को क्या होता था, मैं तो शाम का योग ही नहीं कर पाता था, कभी कभी सुबह की मुरली भी मिस होने का चांस होता था। तो मुझे ये लगता था कि मैं कैसे यहाँ आने का फायदा क्या हुआ, यहाँ के तो मेरी अवस्था और ही खराब हो गई। अमृतवेला भी कम, अमृतवेला तो हो जाता था, मुरली में भी हो जाती, मुरली भी कैसे करके हो जाती थी, कई बार आधी मुरली होती थी, क्योंकि शाम का योग तो कभी होता ही नहीं था, क्योंकि पेशेंट चलते रहते थे, आते रहते थे पेशेंट, स्पेशली हार्ट के पेशेंट ऐसे होते हैं, सीरियस होते हैं। तो मैं दादी को एक दिन मैंने कहा, दादी जी मैं तो यहाँ मेरे शाम का योग भी नहीं होता है और सुबह का योग होता है, किंतु अमृतवेला खाली होता है, बाकी टाइम तो योग ही नहीं होता है। तो दादी ने कहा, गुप्ता जी आप देखो जरा, दादी शाम को बैठ के योग करती है क्या? दादी आप तो उसमें मीटिंग करते हो, लोगों से मिलते हो, भाई बहनों से मिलते हो, आपकी अपनी मीटिंग्स होती हैं दादियों के साथ। तो दादी ने कहा, ये हमारे को 4 घंटे का 6 घंटे का योग नहीं है, हम कर्म योगी हैं, पहले योग फिर कर्म है, इसलिए हम 24 घंटा कर्म योगी बन के रहना है। सोना है तो भी बाबा के साथ सोना है, पहले योग में बैठ के अपने अपना लेटर लिख के चार्ट भर के मुरली पढ़ के बाबा की याद में सो जाना है, बाबा के साथ सोना है, और उठना भी उठते ही बाबा को याद करना, और बाबा के साथ पावरफुल याद करके 1/2 घंटा 1/4 घंटा, और उसके बाद सारा टाइम स्नान करना, जो भी करना है बाबा की याद में निरंतर, पहले योग फिर कर्म। योग और कर्म अलग नहीं है, हमारा तो श्वासोश्वास बाबा की याद होनी चाहिए, और वो अंतर्मुखी आत्मा ही कर्मयोगी बन सकता है, क्योंकि हमारा जब भी थोड़ी माया थोड़ी याद भूलेगी तो माया अपना अटैक करेगी। माया कहां से आती है बताओ, कहां से आती है? बाहर से आती है? कहां से आती है माया? माया अंदर से आती है, 95% माया का अटैक अंदर से होता है। जो भी हमने 63 जन्म में पाप कर्म किया संबंध रिकॉर्ड है, आत्मा में सॉफ्ट कॉपी है और मन में भी हमारे ब्रेन में उसकी हार्ड कॉपी है। जैसे वो व्यक्ति सामने आता है फाइलें खुल जाती हैं, और वही फाइलें खुलती हैं सामने एकदम से खुल जाती हैं, और आप परवश हो जाते हो। अगर बाबा दिल में है, जो अतल बाबा ने कहा, बाबा कहां पर है? अगर सच्चा बच्चा है तो बाबा आपके दिल में है। तो बाबा अगर हमारे दिल में है, जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा हमको दिव्य ब्राह्मण जन्म देते हैं, और जैसे ही शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमको दिव्य ब्राह्मण जन्म देते हैं, हमारे दिल में कौन आ जाता है? बाबा आ जाता है। मनुष्य के दिल में कौन होता है? देहभान, ये दिल नहीं, फिजिकल दिल नहीं, आत्मा का दिल यहां है, चेतना। चेतना में मैं कौन हूं, मेरा कौन है? मनुष्य के दिल में क्या होता है? मैं फला फला हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलानी हूं, और मेरे माँ बाप, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन ये हैं, वो दिल में रहते हैं। ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरे संबंध संपर्क वाले हैं, ये मेरी इतनी वो है, वो दिल में रहता है। और हम बच्चों का जन्म मर्जीवा जन्म है। जैसे ही हमारा जन्म होता है दिव्य ब्रह्म, हमारे दिल में कौन आ जाता है? शिव बाबा। तो सच्ची दिल माने जिस दिल में बाबा की सेवा कोई और ना हो, सच्चा ब्राह्मण माने जिसकी दिल सच्ची है, सच्ची माना जिसमें सारा टाइम जो आत्मा चलते फिरते उठते बैठते अपनी चेतना में, दिल में, कॉन्शियस में, उस दिल आराम शिव बाबा को अंदर रियलाइज करे, सत्य के समझ का सागर, ज्ञान का सागर, उस ज्ञान को अंदर ही अंदर रिवाइज करे, मेरा बाबा यहां बैठा है, ज्ञान का सागर मेरे बाबा यहां बैठा हुआ है, सत्य की समझ का सागर। वो मुझे कह रहा है, बच्चे तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो, तुम सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पुंज हो, तुम मेरी संतान हो, मैं सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पावर हाउस हूं, मैं तुम्हें सर्व संबंधों की पालना और प्यार ब्रह्मा बाबा द्वारा दे रहा हूं। और इस सृष्टि ड्रामा में जो कुछ भी हुआ वो गलत नहीं हुआ है, तुम्हारे अपने कर्मों का फल है, इसलिए उसको फुल स्टॉप लगा के अपने को आत्मा समझ के मुझे परमात्मा पिता की याद में रखे हर कर्म करो। तो इसको ABCD कहते हैं ना, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा। तो सत्य की समझ का सागर मुझे बार बार यहां अंदर से, मतलब मुझे एक जैसे सागर से प्रेरणा अंदर आ रही है, ऐसे वाइब्रेशन जा रहे हैं, पवित्रता का सागर यहां बैठा हुआ है मेरे अंदर, इसको रिवाइज करो। रियलाइज मतलब सच्चे दिल से महसूस करो, बाबा को देखने की चीज नहीं है, आत्मा को देखने की चीज नहीं है, उसको महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। जैसे आम को हम देख सकते हैं, आम के टेस्ट को हम देख सकते हैं, आम के टेस्ट को महसूस कर सकते हैं, गुलाब के फूल को हम देख सकते हैं, पर गुलाब के फूल के खुशबू को देख उसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ऐसे बाबा को देखने की चीज नहीं है, उसे हम महसूस कर सकते हैं, उसके गुणों से महसूस कर सकते हैं। तो बाबा कौन है? सत्य की समझ का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर। शांति मतलब वर्तमान में रहना, कोई भी संकल्प ना चलना, ना पास्ट का ना भविष्य का, वर्तमान में अपने सत्य में टिक करके, अपने सत्य में टिके रहना। बस जो कुछ होना है वही संकल्प आए, और उसके अलावा कोई संकल्प ना आए, वो शांति का सागर है। सागर है वो, उसको कोई संकल्प आता ही नहीं है। जब कुछ उसको इधर आना होता है तो ही संकल्प आता है, कोई संकल्प भी उसको टच नहीं करता है। वो सत्य और निस्वार्थ स्नेह का सागर है। अर्थात हर आत्मा, जैसी भी हो कोई आत्मा, चाहे ग्लानी करने वाली हो, चाहे महिमा करने वाली हो, बीके हो नॉन बीके हो, बीके ज्ञान में श्रीमत पे चलने वाला हो ना चलने वाला हो, सबको बराबर, सबको स्वीकार करती है और सबकी बराबर पालना करती है। ये नहीं कि महिमा करने वाले की ज्यादा पालना करती है और जो ग्लानी करता है उसकी कम पालना करती है, बराबर पालना करती है। इसी को कहते हैं सत्य और निस्वार्थ स्नेह का सागर। अतीन्द्रिय सुख का सागर है वो, उसे इंद्रिया तो है ही नहीं, वो अतीन्द्रिय सुख में खोया हुआ है हमेशा, उसमें समाया आनंद का सागर है वो। सत्य को प्रकट करने की शक्ति का सागर है वो, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति का सागर है, विस्तार को सार में लाने की शक्ति का सागर है। देव और देखी दुनिया का विस्तार है और बाबा का सूक्ष्म वतन जहां शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के मस्तक में बैठा हुआ वो सार है, बाबा वहां बैठा हुआ है। विस्तार को सार में लाने की शक्ति का सागर है, फिर वहां से भी समेट करके परमधाम में बैठा बिंदु बन करके, वो समेटने की शक्ति का सागर है, अशरीर स्थिति का सागर है, महसूस करो उसको गहराई से, निराकार स्थिति का सागर है, बीज रूप स्थिति का सागर है, वो सहन करने की शक्ति का सागर है। कितने भाई बहन, कितनी आत्माएं शरीर शरीर छोड़ती हैं, कितने लोगों पर न्याय हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, वो सहन करता है, उसके बच्चे हैं हम, गलत भी करते हैं ठीक भी करते हैं, वो सहन करने की शक्ति का सागर है। समाने की शक्ति का सागर है, सहन करके समा भी लेता है, कभी बोलता नहीं है एक बात भी, सामना करने की शक्ति का सागर है। वही बच्चा बार बार वही मिस्टेक करता है, हजार बार हाथ उठाने के बाद भी, हाँ बाबा मैं करूंगा, हम भी हाथ उठाते हैं, कितनी बार हाथ उठाया होगा हमको, हमने अब से लेकर तब तक, अब तक और तब से जब से हम आए यज्ञ में, कितनी बार बाबा के सामने हाथ उठाया होगा। बाबा ने 2 महीना दिया, 6 महीना दिया, 1 साल दिया, फिर क्या हुआ? आज 20 साल के बाद भी क्या लगता है, हमने पूरा होमवर्क कर लिया? कल बाबा ने 2 महीना दिया ना होमवर्क के लिए, हमने कर लिया होमवर्क, पूरा हो गया, कब की बात है वो? 2012, 14 साल हो गए उस बात को, पूरा हो गया होमवर्क? 2 महीने तो कब के बीत गए? आज भी वैध समय, वैध कर्म, वैध संकल्प चल जाते हैं ना, नहीं चलते हैं। फिर भी हमें कितना सामना करता है, कोई बात नहीं, मेरे बच्चे हैं, लाडले बच्चे हैं, मीठे बच्चे हैं, है ना, उन्हें माया अटैक कर दिया, कोई बात नहीं, आओ बच्चे आओ, आओ मेरी गोद में समा जाओ। क्या अभी भी जाते तो बाबा आओ बच्चे आओ मेरी गोद में समा, बोलता नहीं बोलता है, महसूस कराता है ना, ऐसी अंतर्मुखता है ना। सहयोग करने शक्ति का सागर है, फिर भी सहयोग करता है। सातों एनर्जी के बैलेंस का सागर है, एक वो ही है जिसके सातों एनर्जी में बैलेंस है, किसी में ज्ञान बहुत है, किसी में पवित्रता बहुत है, किसी में शांति बहुत है, बाकी चीजें कम है, कि तो वो उसमें सातों एनर्जी का बैलेंस है। हीलिंग एनर्जी का सागर है, जिसमें सातों एनर्जी होती है वही हीलिंग कर सकता है, जिसमें एक भी एनर्जी सातों में से कम है वो हीलिंग नहीं हो सकती। वो ज्वालामुखी योग अग्नि का सागर है, उसको सारा दिन डिवाइस रियलाइज करते रहो, अगर उसको अंदर सारा दिन डिवाइस, उसकी मुरली अपने आप अंदर बजने लगती है। आज बाबा ने सुबह क्या कहा था, कल बाबा ने क्या कहा, शाम को क्या कहा, कल सुबह बाबा ने क्या कहा था, बच्चे बच्चे तुझे क्या करना है, कैसा बनना है, तो अंदर बजती है। तो अगर दिल में बाबा है, बाबा की याद रहती है, जिसके दिल में बाबा के अलावा कुछ और नहीं रहता है, और जिसके दिल में सदा मुरली बजती रहती है, श्रीमत के अलावा जरा भी मनमत परमत नहीं, तो जिसके दिल में बाबा सदा रहता है वो सच्ची दिल है, और जिसके दिल में सिर्फ बाबा रहता है, बाबा की मुरली रहती है, मनमत परमत नहीं होती है, वो साफ दिल है। तो इस सच्ची दिल और साफ दिल, बाबा ने कहा था एक मुरली में, जब बाबा शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म देता है, तो बाबा 2 गिफ्ट दे देता है बचपन से, पैदा होते ही ब्राह्मण जन्म की, दिव्य ब्राह्मण जन्म की 2 गिफ्ट है, बर्थडे गिफ्ट है, कौन कौन सी है बताइए, कौन सी है टीचर मैंने बताओ, दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि, ये हम सबकी बर्थडे गिफ्ट है, राइट। तो हमें जैसे ही हमें पर कब 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 खुलती है वो दिव्य दृष्टि रूपी ज्ञान का चरित्र, कब खुलता है, जब दिल में बाबा हो, दिल सच्ची और साफ हो, तो तो दिव्य दृष्टि रूपी ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल एक्टिव हो जाता है और तब मुरली समझ में आने लगती है। मुरली के एक लाइन की गुह्यता महसूस होने लगती है, आत्मा परमात्मा की गुह्यता समझ में आने लगती है। आत्मा कैसे शरीर को चला रही है, आत्मा कैसे सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से मन के माध्यम से, विचार भावनाओं के माध्यम से, वृत्ति और स्मृति के माध्यम से, और कैसे शरीर को बाबा हमें समझाता है। बाबा शिव बाबा बैटरी चार्ज करता है, मुरली के द्वारा मन को पॉजिटिव टीम बनाता है हमारी, पॉजिटिव विचार भावनाएं वृत्ति स्मृति बदलता है और फिर हमें शिक्षा और सावधानी देता है, बच्चे कैसा भोजन करो, शुद्ध सात्विक भोजन करो। आज भी मुझे कुछ भाई थे, आज भी कुछ भाई बहने मिले थे मुझे, कल रात को ही मिले थे कि बाबा हम बच्चे हम बाबा हम जो है खाली फल पे रहें क्या, हम खाली रॉ फूड पे रहें क्या, हम दूध पीना छोड़ दें क्या, हमें ऐसा कुछ करना ही नहीं है, हमें सिर्फ ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा तीन बार भोजन करते थे, दो बार फल खाते थे, हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है हर कदम में। कुछ बोलने की बात ही नहीं है, कुछ नया सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, हमारा बैलेंस जीवन होना चाहिए। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा को हम फॉलो करते हैं, तो बाबा को जो फॉलो करते हैं हमारा ज्ञान, तो ये जो है हमारा जो पासपोर्ट है ना, बाबा ना पासपोर्ट, ये हमारा सूक्ष्म में जाने का पासपोर्ट है। क्या है, क्या पासपोर्ट है, सच्ची दिल साफ दिल, जिसके दिल सच्ची साफ है वही उसको ही सूक्ष्म वतन में जाने का अधिकार है, वही परम धाम में जा सकता है बाबा के साथ। तो पहला पासपोर्ट निकाला है, चेक करो, ये स्मृति सदा इमर्ज रहती है, मैं बाबा ने जी बाबा ने मुझे ब्रह्मा बाबा द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया है, ये बार बार इमर्ज करने की आवश्यकता है। तो ये पासपोर्ट है, और जब इसको दिव्य दृष्टि रूपी ज्ञान का तंत्र एक्टिव हो जाता है, खुल जाता है, थर्ड आई ऑफ विजडम एक्टिव हो जाती है, सत्य को प्रतिष्ठित जागृत हो जाती है, तो अब ज्ञान की मुरली को पढ़ो, एक एक लाइन की गुह्यता समझ में आती है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हम बाबा से कब करंट खींच सकते हैं, ABC कनेक्शन कब मिलेगा, जब चार नियम और चार मर्यादाएं पक्की होंगी, संपूर्ण पवित्रता, जितनी जितनी पवित्रता बढ़ती जाएगी उतनी करंट ज्यादा खींच सकेंगे, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सोपन तक भी पवित्रता जितनी बढ़ेगी, एक दिन नहीं बढ़ती, प्रोसेस है ये, रिटर्न जर्नी है, संपूर्ण पवित्रता हमारी अंत तक पहुंच जाएगी। ब्रह्मचारी तो हम शुरू से बन जाते हैं, तो ब्रह्मचारी बने वो पवित्रता की डिग्री हमको चाहिए, राइट। तो हमारी जो है जैसे हम ज्ञान की गुह्यता को समझते जाते हैं उतना उतना पवित्रता बढ़ती जाती है, और जितना जितना ब्रह्मचारी बनते जाते हैं उतना उतना हम पास्ट को फुल स्टॉप लगा पाते हैं, एक सेकंड में जितनी जो भी बात बीत गई हो एक सेकंंड में टिक करके और बाबा से कंबाइंड होकर कर्म करते हैं, उसको शांति कहते हैं, कर्मयोगी बन जाते हैं। और जब बाबा से कमाइंड होकर हर कर्म करने लगते हैं तो हमारे अंदर सबके प्रति स्नेह उत्पन्न हो जाता है, हम सब बाबा के बच्चे आपस में भाई भाई हैं, कोई कैसा भी किसने मेरे को दुख दिया हो, धोखा दिया हो, इंसल्ट की हो, तो भी मैं उसके उसको बराबर जैसे ब्रह्मा बाबा करते थे, इंसल्ट करने वाला, गाली देने वाला, ग्लानी करने वाले को भी उसको ज्यादा पालना देते थे बजाय के जो महिमा करता है, जो आज्ञाकारी है, तो बाबा सबको बराबर, इसको कहते प्यार, इसको कहते स्नेह, रूहानी स्नेह। तो ये जो है सच्ची दिल साफ दिल क्या है, पासपोर्ट है, पवित्रता वीजा है, और शांति माना पास में जो बीत गया उसको फुस्टॉप लगा देना, ये क्या है, टिकट है सूक्ष्म तल में जाने की, परम धाम में जाने की। और सच्चा प्यार, सच्चा स्नेह सबके प्रति, वो है बिजनेस क्लास की टिकट, अर्थात सोते सोते भी जा सकते हो, इवन रात की योग निद्रा है वो आपकी, क्योंकि बाबा की याद में खोते सोए हो, बाबा के साथ सोते हो, बाबा को एक सेकंड भी अपने से दूर नहीं करते हो, तो ये हमारा टिकट है। तो ये तीन चीज जिसके पास आती है तो दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट चालू हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, वो मुझ आत्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ, सूक्ष्म शरीर क्या है, हमारा मन, मन हमारा शुद्ध पवित्र हो जाता है, मन सारे शरीर पे फैला, बुद्धि यहां है, संस्कार कर्मों में दिखाई देते हैं, बाहर बाहर हमारी संस्कार हमारी ड्रेस है। तो ये हमारी मर्यादा और नियम और मर्यादा, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग और दैवी गुणों की धारणा, चार चार धारणाएं मुख्य, चार दैवी गुणों की धारणा मुख्य, मैंने बताया अभी क्यों, एक तो सत्यता, दूसरी धैर्यता, तीसरी गंभीरता और चौथा सहनशीलता, चार मुख्य है। ये चारों के ऊपर हम चलते हैं ना तो अंतर्मुखता हमारे अंदर डेवलप होने लगती है और गहरे में जाते हैं, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव हो जाती है और हम कहां पहुंच जाते हैं, सूक्ष्म वतन बाप दादा गोद में पहुंच जाते हैं। जैसे जैसे हमें ये सुख मिलने लगता है, अंदर का सुख मिलने लगता है, अतीन्द्रिय सुख मिलने लगता है, सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, सच्चा स्नेह और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होने लगती है, तो क्या होने लगता है, बेहद की वैराग्य वृत्ति आने लगती है। जैसे ब्रह्मा बाबा को बेहद कीजिए, बाबा ने विनाश का सीन देखा, पहले देखा कि एटम बम से लड़ाई हो रही है, मिसाइलों से लड़ाई हो रही है, फिर बाबा ने देखा चार साक्षात्कार एक साथ हुए थे बाबा को बनारस में, जब अपने दोस्त के घर गए हुए थे, गंगा किनारे गए थे, एक पेड़ के नीचे बैठे चार साक्षात। पहला उन्होंने देखा बमों से लड़ाई हो रही है, मिसाइलों से, एटम बम से लड़ाई, तब तो एटम बम बने भी नहीं थे, तो बाबा को तभी। फिर दूसरी सिविल वार, भारत में सिविल वार हो रही है, खून की नदियां बह रही हैं, सब एक दूसरे को मार रहे हैं। तीसरा नेचुरल क्लाइमेटिस देखी, कैसे एकदम सुनामी आ रही है, कैसे आग लगी हुई है, कैसे बहुत बड़े बड़े साइक्लोन्स आ रहे हैं, भूकंप जोर जोर से आ रहे हैं, सब बिल्डिंगें सब ताश के पत्तों के माफिक ढहती जा रही हैं। फिर जब बाबा ने जब चौथा देखा, बाबा ने कहा बच्चे बस, बाबा बस करो मैं और नहीं देख सकता हूँ। तो बाबा को कहा, बाबा ने कहा, जब बाबा एक ध्यान में थे तो बाबा ने कहा बच्चे बाबा कुछ मुझे ऐसा अच्छा दिखाओ। तब बाबा ने दिखाया उनको आने वाली दुनिया कि कैसे सितारे ऊपर से नीचे आते हैं और छोटे से बच्चे में राजकुमार में बदल जाते हैं, प्रिंस प्रिंसेस में बदल जाते हैं। तो बहुत सुंदर सीन दिखाई। तो जब बाबा ने ऐसा देखा तो फिर बाबा को, और बाबा ने कहा, उसने कहा कि तुम्हें ये दुनिया ऐसी दुनिया बनानी है। तो बाबा को चिंता लग गई कि मैं कैसे ऐसी दुनिया बनाऊंगा। फिर तो विनाश जब हुआ तो बाबा ने कोई विरक्ति हो गई, बेहद की विराग्य व्यक्ति हो गई। पर अंदर का सुख जो मिले जिसको मिलता है वो ही बेहद की विराग्य व्यक्ति है। एक हाथ में जब आ जाता है ना कुछ, तभी दूसरे हाथ से छोड़ सकते हैं। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति ना काहू से वैर ना काहू से राग, वैराग्य माना ना वैर ना राग, दोनों ही इक्वली खतरनाक हैं। वैर भी गलत है और राग भी गलत है, दोनों से बचना है। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति उत्पन्न हुई, बेहद की वैराग्य वृत्ति बाबा को इतनी उत्पन्न हुई। बाबा को कई चीजें बनवाने का शौक था घर में, दादी बताती थी, बच्चों के लिए बनवाते थे, कई बार अपने लिए बनवाते थे, कुछ और कपड़े वगैरह गहने वगैरह सब कुछ बाबा का था, अलग स्टाइल था, बहुत ही रॉयल स्टाइल था बाबा का। तो बाबा का अनासक्त वृत्ति होती चली गई, बस अब कुछ इच्छा नहीं रहती थी बाबा को, ये जो मिला जैसे मिला खा लिया कर लिया। फिर बाबा के अंदर उपराम वृत्ति होती गई, बाबा बस खोए खोए रहने लगे। और बाबा को उसके पहले, जब बाबा को वहां पर जब साक्षात्कार, उसी समय बाबा के पास एक मैसेज आया था कि कोई उनके काका चाचा थे, उन्हें शरीर छोड़ दिया था, शरीर छोड़ने बहुत बीमार थे, वो बाबा से मिलना चाहते थे ताकि उनके नाम अपनी प्रॉपर्टी कर सके। पर बाबा जब हैदराबाद पहुंचे तब तक शरीर छोड़ चुके थे। तो बाबा बैठे थे, तभी बाबा ने साक्षात्कार किया कि आत्मा यहां से वृक्ष के मध्य में से पहले पूरे शरीर में गई, पूरे ब्रेन में चक्कर लगाया, फिर पूरे आंखों में चक्कर से नीचे चल गई, अंगूठे तक गई, और फिर दूसरी तरफ अंगूठे में गई, फिर वापस आई और फिर यहां से निकल गई। तब से बाबा को अटेंशन होगा कि मैं कौन हूं, आत्मा मैं आत्मा हूं, और शरीर छोड़ के कैसे आत्मा निकल जाती है, कैसे आत्मा सब कुछ चलाती है। तब से बाबा के अंदर लिखना शुरू किया बाबा ने, मैं आत्मा हूं, यशोदा आत्मा है, ये आत्मा। तो अंतर्मुखता का बहुत गहरा अभ्यास और ये बेहद की वैराग्य वृत्ति बाबा के अंदर आ गई, उपराम वृत्ति हो गई, बाबा एकांतवासी और एकांतवासी हो गए। बाबा कश्मीर चले गए, बॉम्बे चले गए, ऐसे जगह जगह एकांत में जाके बाबा रहते थे। फिर बाबा की एकाग्रता बढ़ती गई, बाबा के अंदर एक नामी आ गई। और जब बाबा के अंदर ऐसे अंदर का सुख मिलने लगा तो बाबा ने अपना तन, अपनी उससे पहले प्रॉपर्टी जो भी थी ना, बाबा की बिजनेस था कलकत्ता में, सारा अपने साझेदार को पार्टी जो था ना, बाबा का जो पार्टनर था उसको कहा तुम ले लो और आधा हिस्सा मुझे दे दो आधा। तो बाबा ने तभी अपना विरक्ति एकदम झाटकू, तो बाबा ने तब से मन बना लिया था कि बस अब, कि बाबा कैसे तैयार कर रहा था बच्चे को, पहले अंतर्मुक्ता आई, बेहद की वैराग्य वृत्ति आई, अनासक्त उपराम वृत्ति आई, उससे जब बाबा उपराम हो गए और फिर जो है बाबा के अंदर अपना तन, कोई भी बाबा जैसा तन मेरा नहीं है, क्योंकि बाबा को टचिंग आती थी बाबा के सामने, बाबा किसी को दृष्टि थे वो उड़ जाता था। तो बाबा कहते कैसे होता है, तो बाबा मतलब बाबा दीवार पे लिखते रहते थे, चित्र बनाते रहते थे, दीवारें भरते रहते थे, डायरियों में लिखते रहते थे, तो मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, डायरी लिखते रहते थे। तो फिर बाबा तन, ये तन मेरा नहीं है, ये मन मेरा नहीं है, अभी ये धन भी मेरा नहीं है और संबंध संपर्क भी मेरे नहीं है। तो बाबा जब ऐसे चार चीज का समर्पण किया ना, तब शिव बाबा की पधरामणी हुई। तो हमारे अंदर भी पहले अंतर्मुखी बनना पड़ेगा, फिर बेहद की वैराग्य वृत्ति पैदा करनी पड़ेगी, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे दिल में क्या रहता है, हमारे दिल में चार ही चीजें रहती हैं, और जो दिल में होता है उसकी याद अपने आप आती है। एक तो शरीर, आज का वरदान था ना शरीर, आत्मा और शरीर का संबंध कितना गहरा है कि नहीं है, जब तक जीते हैं शरीर में कितना बुद्धि रहती है, कितना मन, हर बात इसमें चलती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो कितनी चलती है। तो तन, ये मन, ये धन और संबंध संपर्क, चारों चीजें समर्पण की, तब शिव बाबा का योग लेना शुरू हुआ। तब शिव बाबा आया बाबा के दिल में। जब आपने सुना होगा ना बाबा कैसे शिव बाबा के ब्रजेंद्र दादी ने देखा, राधिका जो थी ना बाबा के बड़े बेटे की बहू थी, उसने देखा कैसे बाबा के मुख से कौन से शब्द निकले थे, निज आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आगे प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम और ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, है ना। तो बाबा की आंखें एकदम लाल हो गई थी तभी बाबा। तो बाबा ने कहा, जब उसकी बहू ने पूछा कि बाबा ये क्या था, बाबा ने कहा बहुत बड़ी लाइट आई थी, बहुत अभी चली गई। तब से बाबा का चेहरा ही बदल गया, बाबा का व्यवहार ही बदल गया। अब बाबा को यशोदा माँ ने भी कभी उसको अपने पति के रूप में नहीं देखा, बाबा ने कभी उसको अपने युगल के रूप में नहीं देखा, अपनी बेटी को अपने बेटे को अपने बेटे के बहू को कभी युगल रूप कभी भी उनके उस रूप में देखा नहीं। तो ऐसा झाटकू, क्योंकि जैसे ही तन में श्याम शिव बाबा आ गया, स्थान खाली किया, शिव बाबा आया और फिर तो शिव बाबा का चेहरा मोरा ही बदल गया, सदा के लिए बदल गया। तो सचमुच में अगर हम तन का मन का धन का और संबंध संपत्ति, ये तन मेरा नहीं है, बाबा की अमानत है, ये मन मेरा नहीं, जो भी संकल्प आए पुराने स्वभाव संस्कार नहीं, जो भविष्य जो भी संकल्प है बाबा से पूछ के करना है, सोचो निर्णय करो जो भी करो अभी बाबा से पूछ के करना है। वेरीफाई से स्लो करना पड़ेगा हर काम को, अपनी स्पीड को स्लो करना पड़ेगा, हर चीज में धीरेता, कोई तुरंत नहीं ये ऐसे कर लो, नहीं मैं सोच के बताता हूँ, मैं बाबा से पूछ के बताऊंगा, है ना। हमेशा ये ध्यान रखना, कुछ भी बात हो कल सुबह अमृत वेले कल योग में पूछ के बाबा से फिर बताएंगे। मेरे से बहुत सारे भाई बहने क्वेश्चन पूछते रहते हैं, कुछ बातें पूछते हैं अपने हार्ट अपनी बीमारी के बारे में, मैं कभी नहीं कहता मैं तुरंत नहीं बताता हूँ, मैं कहता हूँ कल बताऊंगा। तो बाबा से पूछो, बाबा से या पूरा चिंतन करो, सोच आदि मध्यान्ह देखो, त्रिकालदर्शी बन के त्रिनेत्री बन के फिर आप उसको जवाब दो। तो धीरेता लानी पड़ेगी, राइट, अगर हमें आगे बढ़ना है तो तब हमारे अंदर से ऐसी स्थिति आएगी। तो ये तन बाबा की अमानत, आपके आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, आपकी युगल हो, कोई भी हो, कोई कुछ कहे, बाबा से पहले सोचो पूछो कि बाबा करना है कैसे करना है, आप राय दीजिए। तो तन बाबा की अमानत है, मन बाबा की अमानत है, धन भी बाबा का, मेरा नहीं है, भले आपका बैंक बैलेंस है कुछ भी है, आपका मकान है, बाबा का घर है, बाबा का पैसा है, बाबा की चीज है, बाबा की कार है, बाबा की दुकान है, हर चीज बाबा की है, और उसको बाबा को समझ, बाबा की चीज समझ के यूज करो। और फिर संबंध संपर्क भी, ये मेरा युगल नहीं, मेरी बेटा नहीं, मेरी बेटी नहीं, किसकी है ना, बाबा की युगल है, बाबा का बेटा है, बाबा की बेटी है, इस रूप में जब समझेंगे ना तो फिर बाबा आपके दिल में आएगा, तब योग लगाना शुरू होगा। और जैसे योग लगाना शुरू होगा क्या होगा, पेपर आने शुरू हो जाएंगे, राइट। तो आप जितना विधेयी बनेंगे सूक्ष्मतम में पहुंच जाएंगे, फिर वहां से अश्री बनके परम धाम अश्री आपसे कंबाइंड होंगे, तो देह के कर्म भोग पहले भी थे और बढ़ जाएंगे, कर्म भोग बढ़ेंगे, और देह अभिमान, देह अभिमान के संबंध संपर्क के कारण जो आपके अंदर स्वभाव जो आपके हिसाब किताब बनते हैं ना, पैसे के कारण ही बनते हैं और संबंध संपर्क में भी हिसाब किताब बनते हैं, तो इनको सहन करने की शक्ति आती है। अश्री स्थिति से क्या होता है, उसको सहन करने की शक्ति आ जाती है, समाने की शक्ति आ जाती है। जितना अशरीर स्थिति का अभ्यास करते जाते हो, देह के रोग देह कर्म भोग उनको सहन करने की शक्ति आती जाती है, उनको संभाल लेने की शक्ति आती है, सूली से कांटा होने लगता है, ऐसे केमिकल पैदा होते हैं, आपको पेन ही फील नहीं होती है, समाने की सामना करने की शक्ति आ जाती है, सहयोग करने की शक्ति, जो तंग कर रहे हैं उनको सहयोग करने की शक्ति भी आ जाती है, क्योंकि पेपर एक के बाद पेपर आते हैं, आपने देखा होगा लाइफ में कभी पेपर खत्म होते हैं क्या, एक पुरानी दूसरा शुरू तीसरा दूसरा पुरानी तीसरा शुरू चौथा शुरू कई बार तो पांच पांच छह चीजें इकट्ठी आती हैं, नहीं आती हैं, सामना करते रहना पड़ता है, कभी आप चैन की सांस ले नहीं सकते हो ब्राह्मण जीवन में, एक के बाद एक आता है ना, कि तो जो बाबा से कंबाइंड इस दिन में बाबा है उसके लिए सब कुछ सहज हो जाता है, राइट। तो ये हमारा चौथा, तो सहनशीलता, इसको बोलते सहनशीलता, सहन करके समाने की शक्ति, सहन करके सहन तो कर लेते हैं दुनिया वाले, समा नहीं पाते, इसलिए बीपी होता है, इसलिए डायबिटीज होती है, इसलिए पेट में दर्द होता है, पेट में गैस बनती है, कब्जी होती है, एसिडिटी बनती है, इसलिए सिर में दर्द होता है, माइग्रेन होता है, इसलिए कमर में दर्द होता है, इसलिए घुटनों में दर्द होता है, राइट। सारी बीमारियां क्यों होती है, सहन तो कर लिया, समा नहीं पाए, उबलने से उबल रहे, राइट। कोई दवाई भी काम नहीं करती है, तो ये बाबा से जब अशरीर बन के अशरीर बाप से कमांड, तो हमारे अंदर ये सहज शक्ति आती है। और जब ये मैंपन मेरापन खत्म होता है तो क्या होता है, तो अंदर से बाबा साथ आ जाता है, निराकारी बाप से हम कंबाइंड हो जाते हैं, निराकारी निर्विकारी माना हमारे अंदर सब काम क्रोध लोभ अहंकार खत्म होने लगता है। तो हमारे अंदर से बेफिक्री आने लगती है। बाबा का साथ जितना जितना निर्विकारी बनते जाते बाबा हमारे साथ कंबाइंड रहने लगता है, क्योंकि बाबा जिसके अंदर थोड़ा भी विकार बाबा उसके कंबाइंड नहीं रह सकता है। बाबा तभी कंबाइंड रहने लगता है जब सर्व संबंधों से जब निर्विकारी बनते जाते हैं, निरहंकारी बनते जाते हैं, तब बाबा तो हम बेफिक्र, जैसे ब्रह्मा बाबा बेफिक्र बादशाह बने ना, तो पांचवा कदम कौन सा है? बेफिक्र बादशाह। जितना ईश्वरीय फकुर रूहानी फकुर रहता उतना ईश्वरीय, तब मैं अपन मेरे, तब बेफिक्री आने से ईश्वरीय फकुर बढ़ने से फिर मैं अपन मेरेपन का त्याग होने लगता है। जब मैं अपन मेरेपन का त्याग होने लगता है तो क्या होता है? निराकारी अवस्था बढ़ने लगती है। अशरीरी के बाद नेक्स्ट अवस्था है निराकारी अवस्था। निराकारी बाप से कंबाइंड रहने लगते हैं तो तपस्या, त्याग तपस्या, तो मैं अपन मेरेपन के त्याग से तपस्या होने लगती है। पहले योग था, योग में हम विधेयी बने अशरीरी बने, तपस्या से निराकारी बनते हैं, निर्विकारी बनते हैं। निराकारी बनकर जब निर्विकारी, निराकारी बाप से कमाए तो तपस्या, तपस्या माना अब मैंपन मेरेपन का त्याग की तपस्या, मैंपन के त्याग की तपस्या, मेरेपन के त्याग की तपस्या करते हैं। दिन रात श्वासों श्वास तपस्या जीवन होता है। 24 घंटा मैंपन मेरेपन का त्याग हमारे जीवन में हो जाता है, किसी बात में मैंपन मेरापन नहीं रहता है। तो हम निर्विकारी अर्थात काम क्रोध लोभ अहंकार उनके आसुरी संस्कार, आलस्य अलबेलापन दोष दर्शन बदलने की भावना चिंता भय जल्दीबाजी ईर्ष्या द्वेष खत्म होने लगता है, सबके प्रति संभाव पैदा होने लगता है। और जैसे जैसे होने लगता है तो त्याग से निराकारी स्थिति बनती है, और निराकारी से निराकारी बाप से कंबाइंड होता है तो निर्विकारी स्थिति बनती है, तपस्या होती है निर्विकारी, और जब निर्विकारी बनते हैं तो सेवा शुरू होती है। निर्विकारी स्थिति में जब हम बाबा से कंबाइंड होकर सेवा करते तो सेवा हमारी दूर से तक पहुंचती है, 1000 किलोमीटर दूर भी पहुंचती है, अमेरिका तक भी पहुंचती है, हम ग्लोब को सकाश दे सकते हैं। विकारी आत्मा जिसका अपने मन पे कंट्रोल नहीं, जिसके अंदर विकार, वो तो सकाश नहीं दे सकता, मनसा सेवा नहीं कर सकता, उसका अपने मन पे कंट्रोल नहीं तो मनसा सेवा कैसे करेंगे? तब त्याग तपस्या सेवा, तो तपस्या से सेवा शुरू होती है, तपस्या से हम निर्विकारी बनते हैं। इसलिए कहा निराकारी, फिर सातवां स्टेप कौन सा हो गया? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो जितना हम बाबा से मिलकर तपस्या करते हैं ना, सेवा करते हैं, उतना निरहंकारी करावनहार करा रहा है, मुझ करानहार आत्मा के द्वारा, उतना एकदम निरहंकारी और बनते जाते हैं। तो जितना निरहंकारी बनते जाते हैं बाबा, उतना बस हमारे अंदर क्या स्मृति स्वरूप के रूप में बाबा और मैं और बाबा, मैं और बाबा बस हमेशा कंबाइंड रहने लगते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा लास्ट में एकदम चलते फिरते बाबा को ऐसे दादियां कहती हैं, जैसे बाबा ऐसा फिर होता है बादल का, कोई बादल का, कोई बादल का हिस्सा, जैसे बादल कोई चल के गया, बादल होता ना चला गया, बादल ने पास किया मेरे सामने से, और बाबा इतने अशरीरी इतने निराकारी आते थे एकदम नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो आठवां स्टेप है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, हमेशा स्मृति स्वरूप रहते हैं। तो ये बाबा के 8 कदम थे जो हमें सदा अपने जीवन में निरंतर अंतर्मुखता, हमेशा अंदर रहें, इंचार्ज बन के रहें, उससे हमारे अंदर का सुख आने लगेगा, अर्थात पवित्रता, शांति, सच्चा स्नेह, अतीन्द्रिय सुख पैदा होने लगेगा, तो भेद की वैराग्य वृत्ति आने लगेगी, और भेद की वैराग्य वृत्ति आएगी तो हम अनासक्त उपराम होने लगेंगे, हमारी एकांतवासी बनने लगेंगे, उससे फिर तन मन धन और संबंध संपर्क का समर्पण कर देंगे, तब योग लगना शुरू होगा। नहीं तो योग जब तक लगता नहीं है, थोड़ा भी तन में मेरापन है, मन में मेरापन है, धन में संबंध संपर्क में मेरापन है, तो योग लगता नहीं है। और जब योग लगना शुरू होता है तो सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने सहनशीलता आ जाती है। जितना सहनशीलता आती जाती है, इतना पेपर आते हैं, उतना ईश्वर फकुर बढ़ता है। बेफिक्र बादशाह से ब्रह्मा बाबा बेफिक्र बादशाह, 380 बच्चों की पालना करनी थी, घर में एक पैसा नहीं था, तो भी बाबा बेफिक्र बादशाह बन के रहे। और फिर उसके बाद त्याग, किसका त्याग? मैंपन का त्याग, मेरेपन का त्याग। तो तपस्या शुरू होती है, तपस्या से सेवा शुरू होती है, उससे हमारी निराकारी स्थिति, निर्विकारी, निराहंकारी, जो बाबा ने लास्ट दिन बताए मुरली में, पहले कभी नहीं कहे थे, लास्ट दिन वो 7वां स्टेप था। और उसके बाद शाम को बाबा क्या हो गए? उसके थोड़ी देर बाद ही बाबा नष्टोमोहा स्मृति स्वरूप बन के चले गए 1 सेकंड में। तो ऐसे अगर हम करेंगे तो हम ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बन जाएंगे, और जल्दी ही बाबा को प्रत्यक्ष करके अपने चेहरे और चरण के द्वारा सारे विश्व में बाबा जय जयकार बाबा की होती रहेगी। ओम शांति। चलिए हम 2 मिनट के लिए बाबा को याद करेंगे, फिर आज आपके लिए कल्चरल प्रोग्राम है। सभी आप बहुत उसे प्यार से एंजॉय करना, इसी स्थिति में अंतर्मुखी बन के एंजॉय करना वेद की वैराग्य वृत्ति के साथ।
तेरी पालना ओ बाबा, पावन हमें बनाए, उड़ के फरिश्ता बन अब हम तेरे पास आए। तेरी
तेरी।